अध्याय सात, आध्यात्म और कविता, आधुनिक कवियों का भक्ति काव्य। दर्शन, आध्यात्म और कविता के संगमन का सबसे बड़ा सांगोपांग तथा सटीक विवेचन, जैसा पहले भी उल्लेख किया गया, निराला अपने निबंध दो महाकवि में करते हैं, जहां कवि अपने दो प्रिय और बड़े कवि रविंद्रनाथ तथा तुलसीदास के सापेक्ष मूल्यांकन में प्रवृत्त होता है। निराला का मानना है, इनोटेड कामा, छायावाद, रहस्यवाद या अध्यात्मवाद की तुलना में रविंद्रनाथ किसी तरह भी तुलसीदास के सामने नहीं ठहरते, इनोटेड कामा बंद। अपनी इस उपपत्ति की पुष्टि के लिए लेखक ने अध्यात्म और दर्शन के विविध संदर्भों में इन दोनों कवियों की तुलना की है। तुलसी और रविंद्र की इस तुलना के लिए निराला ने पृष्ठभूमि तैयार की है। लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा, इधर जब से पश्चिमी शिक्षा देश में जगी, साधुओं तथा भारतीय पुराणों की आख्यायिकाओं पर लोगों का अविश्वास प्रबल होने लगा। शिक्षित साधुओं से पृथक हो गए। इस तरह शिक्षितों का एक पृथक समुदाय देश में तैयार हुआ। राष्ट्र सम्मेलन के लिए नपुंसक मक्का मुखी मुसलमानों की तरह हिंदुस्तान के साधु समागम से सतर्क बचे हुए उनकी शिक्षा से विमुख हमारे शिक्षित भी लंदन मुंड बने रहे, यूनाइटेड कॉमन। इस क्रम में फिर निबंध लेखक रविंद्रनाथ की मुक्ति साधना, ब्रह्म परिकल्पना, सौंदर्य दर्शन आदि का विवेचन करते हुए उसकी तुलना तुलसी से करता है। रविंद्रनाथ की मुक्ति साधना के बारे में निराला लिखते हैं, यूनाइटेड कॉमा, वैराग्य साधने मुक्ति से अमार नय, यूनाइटेड कॉमन। वैराग्य साधना द्वारा जो मुक्ति मिलती है, वे कहते हैं वह मेरी मुक्ति नहीं। रविंद्रनाथ की मुक्ति विवेचन में भी यूरोप और भारत की खासी खिचड़ी पकती है। पत्रों की हरितिमा, आकाश की नीलिमा, पुष्पों की सुगंध में इन्हें मुक्ति का स्वाद मिलता है। सुनने में कितना अच्छा है यह वाक्य, मसनत की भी न छूटेगी, तकलीफ भी सहनी नहीं और मुक्ति भी हाथों हाथ, एक हाथ में पूंजीवाद और दूसरे में अखंड तत्व ज्ञान, एक आंख से बीवी बच्चों को स्नेह और प्यार भी कर लेंगे और दूसरे से ब्रह्म भी देख लेंगे। यह दर्शन रविंद्रनाथ का है, नोटेड कामा बंद। सौंदर्य दर्शन के प्रसंग में रविंद्रनाथ के यहाँ, नोटेड कामा, दिव्य चित्र नहीं निकलता, उधर तुलसी में दिव्य भाव की ही छटा है, नोटेड कामा बंद। कविता में अनेक कोटियाँ हैं। मानने वाले निराला इसी प्रकार तुलसीदास के अद्वैत दर्शन को अधिक गहरे स्तर पर देखते हैं। रविंद्र की दो काव्य पंक्तियों का विवेचन करते हुए वे लिखते हैं, इनोटेड कामा, यहाँ पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति का साम्य बिल्कुल नहीं पाया जाता, दूसरी पंक्ति का संबंध छिन्न हो जाता है। मेरा और तुम्हारा संयोग जब होता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, इतना तो सत्य है। फिर जो उस समय विश्व सागर तरंगाकार डोल उठता है, यह कौन देखता है। इस तरह के भाव पर तुलसीदास बहुत ही खूब उतरते हैं। सो जाने जही देह जनाई, जानत तुम ही हुए जाई। मिल जाने के बाद, तुम हो जाने के बाद, तुलसीदास फिर उस कल्पना का अंत भी कर देते हैं, इनोटेड कॉमा बंद। तब लंबे विवेचन के बाद निराला इस निष्पत्ति पर पहुंचते हैं, इनोटेड कॉमा, हमारे विचार से गोस्वामी तुलसीदास साहित्य और सत्य दर्शन के पारंगत महाकवि है। रविंद्रनाथ साहित्य के महामान्य महाकवि हैं, और उनकी दार्शनिक कविता जहाँ उनकी मौलिकता लिए हुए है या रचना चातुर्य से चलती है, उतनी सहृदय नहीं, इनोटेड कॉमा बंद। मतवाला 1929 के अंकों में धारावाहिक प्रकाशित। यूँ कविता और तदनुसार कवियों की कोटियों में निराला जहाँ दो को विविक्त कर रहे हैं, साहित्य और सत्य दर्शन के महाकवि तथा साहित्य के महाकवि। भक्ति, आध्यात्म, दर्शन या कि निराला के शब्दावली में सत्य दर्शन का काव्य क्रमशः रूपांतरित भी हुआ है। हिंदी का संदर्भ लें तो सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जहां भक्ति काल के केंद्र में विनय और लीला है, रीति काल में सिर्फ लीला रह जाती है। द्विवेदी युग में जहां ब्रज का स्थान खड़ी बोली लेती है, वंदना विनय का स्थान ले लेती है। पहले ईश वंदना और फिर मातृभूमि वंदना। छायावाद के कवि प्रार्थना के भावभूमि में उतरता है और उसके बाद प्रणति आती है। इस प्रकार विनय की मुद्रा आराध्य की प्रकृति अपने ढंग से समझने मानने के अनुकूल बनती है, तदनुसार उसका नामकरण होता है, जिसमें के कुछ उदाहरण अभी दिए गए। यह क्रम विकास कुछ विस्तार में विवेचन स्पष्टीकरण चाहता है। सूरदास के बारे में प्रसिद्ध है कि महाप्रभु वल्लभ से भेंट के पूर्व वे विनय के पदों की रचना करते थे। प्रभु हों सब पतितानि कौ टीकौ अथवा हमारे प्रभु अवगुण चित्तन धरौ। कहा जाता है कि वल्लभ से भेंट के समय सूर ने ऐसा ही कोई पद गाकर उन्हें सुनाया। इस पर महाप्रभु ने कहा, सूर हैं कहें घिघियात काहें कौ हैं कछु भगवल लीला कौ गान करी। सूर से संभवतः श्लेष अभिप्रेत हो और उसके बाद तो कवि ने कृष्ण लीला का सागर ही जैसे रच दिया हो। सुरसा इस किंवदंती की एक प्रकार से व्याख्या में हरिप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इनोटेड कामा, सूरदास इस विरक्ति को लेकर बड़े हुए थे। वल्लभाचार्य के संसर्ग में आने पर उन्होंने लीला गान करने की दीक्षा ली और सरल हृदय बालक की भांति इस नई चीज को पाकर पुरानी का मोह एकदम त्याग दिया। इनोटेड कामा पर हिंदी साहित्य की भूमिका सूरदास विषयक प्रकरण। इस प्रसंग में मुख्य भाव यही है कि वल्लभाचार्य ने सूर के मन की निवृत्ति को कृष्ण लीला गान में प्रवृत्त करके सौंदर्य और आनंद की विराट अनुभूति के द्वारा कवि के मन में खोल दिए हैं, नकार को सर्जनात्मक सकार बना दिया। रीतिकाल के ऐहिक वातावरण में विनय का भाव तो छीज गया, कृष्ण लीला का वर्णन ही प्रधान हो गया। भक्ति में श्रृंगार की भूमिका प्रबल हो गई, जो एक प्रकार से भारतेंदु के समय तक प्रायः उसी रूप में चली आती है। द्विवेदी युग में कविता की भाषा बदलती है, ब्रज से खड़ी बोली और साथ साथ संवेदना भी। द्विवेदी युग को छायावाद से जोड़ने वाले जयशंकर प्रसाद ने ब्रज और खड़ी दोनों में रचना की। उनके प्रथम संकलन चित्राधारा में अब काव्य का समूचा अंश ब्रज में है। गद्य खड़ी बोली में बहुत कुछ भारतेंदु जैसा बंटवारा। इन आरंभिक ब्रज भाषा की कविताओं के बाद प्रसाद फिर खड़ी बोली में आ जाते हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि प्रसाद की ब्रजभाषा काव्य में ईश वंदना की बहुलता है, पर खड़ी बोली काव्य में ईश वंदना का स्थान मातृभूमि वंदना ले लेती है। भाषा और संवेदना के साथ साथ बदलाव का यह साक्ष्य जितना रोचक है उतना ही कविता की रचना प्रक्रिया को समझने में उपयोगी भी। परमात्मा तत्व जब इष्ट देव के रूप में नहीं रह जाता, सगुण का स्थान निर्गुण ले लेता है, इसीलिए द्विवेदी युग में विनय वंदना में रूपांतरित हो जाती है। विनय और वंदना की तुलना में प्रार्थना कुछ और सूक्ष्म अमूर्त बनती है, जिसके पहले कुछ उदाहरण सुमित्रानंदन पंत में दुष्टभ्य है। क्यों छायावाद में प्रार्थना के दोनों प्रकार मिलते हैं, आरंभिक दौर में निर्गुण फिर बाद में सगुण। निराला का लंबी अवधि में फैला काव्य जिसका बहुत सटीक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह स्थिति अपने में रोचक है कि निराला के यहाँ रहस्य जगत को लेकर है, ब्रह्म को लेकर वैसा नहीं। आरंभिक दौर से अंतिम चरण तक उनकी प्रार्थनाएं सीधे देवी देवताओं को संबोधित हैं। कवि के प्रतिनिधि संकलन अपरा में देवी सरस्वती के प्रति आवेदन, दुर्गा काली के लिए प्रणति, जहाँ भक्त की चरम कांक्षा है कि उसका शरीरांत देवी की अलक्त लगे चरणों के तले हो। भारती वंदना, देवी सरस्वती और भारत माता का संपृक्त स्वरूप मातृवंदना, ये सारी वंदना प्रार्थनाएं एक दूसरे में कहीं घुल मिल गई हैं। निराला के भक्ति प्रणीत गीतों की कुछ विस्तृत चर्चा का अवसर आगे होगा। निराला के भक्ति काव्य की भावभूमि को बहुधा प्रणति की संज्ञा दी जाती है। कुछ ऐसे ही भावभूमि छायावादोत्तर काल के कई प्रमुख कवियों में भी मिलती है। मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति काव्य पर लिखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बड़ी मार्मिक बात कही है, इनोटेड कामा, मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। इनोटेड कामा, जाहिर है कि भक्ति काव्य का यह जीवन प्रेम अलग अलग युगीन संदर्भों में अलग अलग ढंग से प्रकट होगा, जबकि जीवन प्रेम की अपेक्षा तो सनातन है। प्रख्यात भक्त कवियों का काव्य पढ़ने सुनने पर वह हमारे अंदर संस्कार की तरह उतरता है, समकालीन विषमताओं के बीच प्रेरित होकर कभी जब हम भक्ति काव्य की रचना करते हैं तो वह विचार के स्तर पर अधिक होता है, संदर्भगत इस विविधता का कारण है। हमारी अपने युग में तर्क विज्ञान का ऐसा दबाव है कि मध्यकाल जैसी एकांत निष्ठा अब संभव नहीं लगती। यह युग मूलतः संदेहवादी है, जो आज का कवि संदेही भक्त ही हो सकता है। निराला एक बड़ी अपवाद जरूर है, जिनके यहाँ आरंभ से अंत तक सारे घुमावदार और मीहड़ रास्ते के बीच भक्ति की अंतर्धारा चली चलती है। दूसरी ओर ऐसे कवि है जिन्होंने चौथेपन में भक्ति काव्य रचा। बच्चन, दिनकर जैसे जवानी के कवि इस भावभूमि पर अंततः पहुँचते हैं। उत्तर अज्ञेय में भी ऐसी अनुगूंजें सुन पड़ती हैं। निराला के भक्ति गीत यदि उनके लंबे रचनाकाल में सर्वत्र फैले बिखरे हैं तो नई कविता के स्वयं घोषित अतुकांत कवि लक्ष्मीकांत वर्मा ने 75 की आयु पूरी करके जैसे एक व्यवस्थित विनय पत्रिका एक बारगी तैयार की है, दीप तिहरी 1997 नाम से। शीर्षक ही इन 100 कविताओं के संकलन में से एक कविता का आरंभ यहाँ उद्धृत है। मैं कितनी दूर से तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मूर्तियों में गड़े सो रहे हो। यदि कविता के भीतर से देश काल के संदर्भ निकाले हो तो कह सकते हैं कि यह प्रयाग में संगम तट पर लेटे हनुमान जी का अस्तमन है। यूं अपने व्यापक काव्य अनुभूति में वह परम तत्व के किसी रूप को संबोधित हो सकती है। कहना न होगा लक्ष्मीकांत के संकलन की प्रायः सभी कविताएं प्रार्थना और प्रणति की विविध मुद्राओं में चलती हैं। निराला ने द्विवेदी युग के व्यवस्थित काव्य प्रकारों के बीच विद्रोह किया था। लक्ष्मीकांत विद्रोहियों के बीच विद्रोही है, इसलिए लक्ष्मीकांत की प्रणति कहीं प्रायश्चित का रूप लग सकती है, पर निराला अपने विद्रोह और अपनी प्रणति दोनों में सहज हैं और यही उनका रचनात्मक आत्मविश्वास बड़ा है। नरेश मेहता और शमशेर बहादुर सिंह नई कविता का अग्रणी कवि हैं। दोनों दूसरा सप्तक में सहयोगी और मूलतः प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य के चितेरे। दोनों आरंभिक रचनाकाल में मार्क्स के चिंतन को स्वीकार करते हैं तथा लंबे समय तक साम्यवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। बाद में दोनों अध्यात्म की ओर उन्मुख होते हैं। नरेश काफी पहले विस्तार में, शमशेर महज संकेतात्मक रूप में। शमशेर के मरणोत्तर संकलन कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, जहाँ तहाँ अध्यात्म की झलक मिल जाती है। अंध की ओर तो एक पूरा भजन ही दिया हुआ है। हरि मोरी आड़, हरि ही मोरी आड़, हरि मोरी झांकी हरि ही किवाड़। यद्यपि इसका रचनाकार छठे दशक में लिखित है, संग्रह की संपादिका और शमशेर को अंतिम दौर में करीब से देखने समझने वाली रंजना अरगड़े का आमुख में पर्यवेक्षण प्रस्तुत संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वे लिखती हैं, नोटेड कामा, शमशेर जी भीतर से गहरे तक कहीं आध्यात्मिक थे। संपूर्ण रचना रूप भी अंदर बाहर से ऐसा ही था। आज तक मार्क्सवाद और रूपवाद की लड़ाई में उनकी असली कविता मानव हाथ से फिसल गई। इस संग्रह के बहाने शायद इस पहलू पर भी विचार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इनोटेड काम पर कुछ परवर्ती कवियों में कैलाश वाजपेयी की चिंतन परक रुचि जैसी अध्यात्म में गहरे विकसित हुई, वैसी सघन रचनात्मक अभिव्यक्ति उनके यहाँ अभी होनी है। इस प्रसंग में एक जिज्ञासा और बनी रहती है। शमशेर नरेश मेहरा, नरेश के मित्र और सहयोगी कवि मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय को यदि पूर्णायु मिली होती तो क्या वे भक्ति काव्य लिखते या कि आध्यात्मिक रचना करते, और लिखते रहते तो किस प्रकार का काव्य दर्शन या आध्यात्म का रचनात्मक संबंध लंबे समय से विवाद और विचार का विषय रहा है। महान साधक और संपन्न कवि श्री अरविंद का साक्ष्य इस प्रसंग में स्पष्ट ही महत्वपूर्ण है। अपने साहित्यपरक पत्रों के संकलन के अंतर्गत कविता में दर्शन की स्थिति पर सीधे टिप्पणी करते हुए संभवतः किसी समाचार पत्र में 1931 में प्रकाशित आलेख पर श्री अरविंद अपनी प्रतिक्रिया यों व्यक्त करते हैं। इनोटेड कामा, कविता में दर्शन से आपके संवाददाता का अभिप्राय है क्या? निश्चय ही यदि कोई अति भौतिक तर्क को छंद में ढाल दे यूनानी एम्पिडोक्लस या कि रोमन लुक्रेटियस की तरह तो यह एक जोखिम का व्यापार है, और संभावना है कि यह तुम्हें गद्यात्मक कविता में ले जाए जो मिश्रण काव्यात्मक गद्य से तो कम क्षम्य है। कुछ कम खतरनाक ढंग से दर्शन परख होने में भी यह चिंता रखनी होगी कि सपाट या भारी न हो जाए। स्पष्ट ही आकाशचारी पक्षी के गाने में काव्यात्मक होना आसान है यह स्थिति की तुलना में जबकि आप ब्रह्म के तत्व को छंद के वस्त्र में आच्छादित कर रहे हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कविता में विचार या आध्यात्मिक विचार या सत्य की अभिव्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। और कोई ऐसा बड़ा कवि नहीं हुआ जिसने दर्शन परख होने का यत्न न किया हो। इनोटेड कामद कविता में दर्शन या अध्यात्म का यह विवेचन अत्यंत संतुलित है और स्वयं अपने कवि कर्म में इस संतुलन का निर्वाह श्री अरविंद के यहाँ कितना हो सका है इस पर मतभेद संभव है। वस्तुतः दर्शन और अध्यात्म कविता के सबसे बड़े शत्रु हैं और परम उपकारक भी, निर्भर करता है कि उनकी गुलावट पर। स्वयं श्री अरविंद के सावित्री महाकाव्य में दर्शन आध्यात्म ने कविता को आक्रांत कर लिया है, जबकि उनके समकालीन रविंद्र की गीतांजलि में कविता और आध्यात्म को अलग अलग कर पाना असंभव है। मध्यकाल में कबीर और तुलसी का काव्य या कि आधुनिक काल में कामायनी ऐसे ही समागम का उत्कृष्ट उदाहरण है। पर यहाँ भी कहीं कहीं दर्शन और आध्यात्म की प्रबलता कविता को दबा लेती है। जैसे रामचरितमानस के उत्तरकांड अथवा कामायनी के अंतिम तीन सर्ग दर्शन, रहस्य और आनंद में कुल मिलाकर भाव प्रदान विधानों से कविता बनाना सहज है। जैसे भक्ति, श्रृंगार, राष्ट्रीयता या कि देशभक्ति में से तर्क या व्यवहार प्रधान विधाओं से अपेक्षा या मुश्किल जैसे दर्शन या राजनीति से। दर्शन और कविता तो ऐसा कहा गया एक दूसरे को शत्रु भाव से देखते हैं ज्योतिष के मुहावरे में। अध्यात्म की स्थिति कहीं बीच की है और सर्वत्र कविता की कसौटी एक ही है कि कोई अनुभव या विचार अनुभूति में ढल पाया है या नहीं। अनुभव का अनुभव अनुभूति और फिर अनुभूति का अनुभव कविता। अंत में निराला के भक्ति काव्य की कुछ अलग से विवेचना अपेक्षित है। निराला की विनय पत्रिका। विद्रोही कवि निराला के प्रिय और बड़े कवि मर्यादावादी तुलसीदास हों, जैसा कि इस प्रकरण के आरंभ में हम देख भी चुके हैं, तो यह वर्ण करने में एक तरह का विरोधाभास है। कवि ने अपनी प्रबंध रचना लंबी कविता के रूप में रामकथा के एक मार्मिक और ओजस्वी प्रसंग पर की। राम की शक्ति पूजा और एक खंड काव्य जैसा रचा राम कथा के गायक तुलसी भर तुलसीदास शीर्षक से। शक्ति पूजा भारतीय जीवन के सबसे बड़े नायक राम के शक्ति संपन्न होने की प्रक्रिया है तो तुलसीदास सिंधी क्षेत्र के सबसे बड़े राम कथा गायक तुलसी के शीर्ष कवि बनने की मौलिक कल्पना की अवधारणा दोनों को गहरे स्तर पर जोड़ती है। फिर प्रबंध के साथ साथ स्फुट रूप में तुलसी जैसे विनय के पदों या कि आधुनिक ढंग के गीतों की रचना निराला ने की। तुलसी यों हर रूप में उनके आदर्श, विद्रोही की विनय भी वैसी ही सच्ची है। यह इन प्रार्थना प्रणति के गीतों में सहज दृष्टव्य है। यहाँ फिर स्मरण दिलाना होगा कि भक्ति और विनय के गीत निराला के रचना काल के एकदम आरंभ से एकदम अंत तक चलते रहते हैं। रामलीला शर्मा द्वारा संपादित निराला काव्य के संकलन राग विराग का ही यदि एक सर्वेक्षण कर लिया जाए तो आरंभिक दौर में इस प्रकार की रचनाएं दिखेंगी। देव मैं करूं वरण या जननी दुखरण पदराग रंजित मरण, अनगिनित आ गए शरण में जन जननी पावन करू नयन, वर दे बीड़ा वादनी वर दे भारती जय विजय करें, प्रात तव द्वार पर आया जननी नैश अंध पथ पार कर। इन गीतों के अतिरिक्त राम की शक्ति पूजा में कई स्थलों पर अत्यंत मार्मिक दुर्गा स्तवन है। द्वितीय चरण में विनय गीत कम है, दलित जन पर करो करुणा इस कोटि में आता है। तृतीय चरण का श्रेष्ठतम कृतित्व भक्ति और प्रणति की गीतों में दृष्टव्य है। इन गीतों की संख्या भी इस अवधि में सबसे अधिक है, कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा। वरद हुई शारदा जी हमारी, जिधर देखिए श्याम विराज, नील जलधि जल नीला कराभ है, भग्न तन रुग्ण मन जीवन विषण मन, मरा हूँ हजार मरण पाई तव चरण शरण, हे जननी तुम तपश्चरिता माँ अपने आलोक निखारो, दुरित दूर करुनाथ अशरण हूँ गहो हाथ, भजन कर हरि के चरण मन, अशरण शरण राम काम के छवि धाम। भक्त और विनय के ये गीत माँ शारदा, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, हरि, शंकर, राम और कृष्ण को संबोधित है। यदि इनको एकत्र व्यवस्थित कर दिया जाए तो ऐसे पहले भी कह चुका हूँ निराला की एक संपूर्ण विनय पत्रिका बन जाएगी। यहाँ वे हिंदी के संतों और भक्तों की नामावली को समृद्ध करते दिखते हैं। कभी उत्तरकालीन संग्रह अर्चना आराधना शीर्षकों से भी विनय पत्रिका की ध्वनि आती है। निराला के इस विशिष्ट भावभूमि के पीछे उनके आराध्य रामकृष्ण विवेकानंद की प्रेरणा किसी कदर सक्रिय देखी जा सकती है, जिससे उनके चरम विद्रोह और गहन भक्तिभाव के बीच कहीं गहरी संगति है। देवी के विविध रूपों के प्रति विशेष प्रणति इस सानिध्य से फलीभूत होती है। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध लंबी कविता नाचुक तहाते श्यामा का अनुवाद भी निराला ने नाचे उस पर श्यामा शीर्षक से किया है। अपरा संकलन में अनुवाद के नीचे टिप्पणी है, स्वामी जी ने इसमें कोमल तथा कठोर भाव के वर्णना द्वारा कठोरता की सिद्धि दिखलाई। हो सकता है जाने अनजाने निराला ने इस मंतव्य को अपने लिए एक काव्य दर्श माना हो। फिर ध्यान देने की बात यह भी है कि निराला के इन भक्ति प्रार्थना गीतों में हारे को हरि नाम की मुद्रा नहीं, भक्ति की अनुभूति उन्हें बराबर लौकिक जीवन से जोड़े रहती है, इसलिए रचना शक्ति का अनवरत स्रोत है। निराला के इस आस्तिक हिंदू मनस को ध्यान में रखकर ही उनके कृतित्व को ठीक ठीक समझा जा सकता है, उनके विद्रोह को भी और उनकी प्रणति को भी कोमल तथा कठोर भावों की सन्निधि में।